તારીખ 7/5/1994ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મુંબઈમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 94.
બાર બાર એ બાત લેતે હૈ भी कार्य करना है वो कार्य की पद्धति को कार्य विधि कहते हैं, कार्य करने की विधि कहते हैं, रीति कहते हैं। तो मतलब की बात तो वो होती है हर एक को कि ऐसे सामूहिक शिविर के जो भी वक्तव्य होता है उसमें तो बहुत सी बातें आती हैं, अपने को कौन सी बात लागू पड़ती है, ऐसी प्रयोजनभूत दृष्टि हमारी होती है तो हमें हमारे काम की चीज मिल जाती है। शास्त्र स्वाध्याय में भी ऐसा ही है कि पूरे शास्त्र में हमारे काम की बात कौन सी आई, एक बात पर हमारी नजर नहीं होगी तो प्रयोजनभूत विषय पर हमारा हमारी दृष्टि नहीं होने से शास्त्र का बोध हमें लागू पड़ेगा नहीं। या तो संक्षिप्त में यह समझना चाहिए कि हम कितना भी तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, जहां तक वर्तमान में हमारा प्रयोजन क्या है और कौन सी बात हमें इस प्रयोजन में लागू पड़ती है वो बात हमारी समझ में नहीं आएगी और हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं होगा तो कितना भी समय चले उसमें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जिन मुमुक्षु भाइयों को बहुत समय निकला है इस मुमुक्षुता में रह करके फिर भी प्राप्ति नहीं हुई है, क्यों, प्रश्न तो ये उठना चाहिए, इसलिए प्राप्ति नहीं हुई है कि प्रयोजन पर हमारा लक्ष्य ही नहीं है, इसलिए प्राप्ति नहीं हुई है। वरना इतनी ठोस बात है, परम सत्य है और वो मिले और हित नहीं हो कैसे बन सकता है, बन ही नहीं सकता है। ऐसे ग्रंथों में ज्ञानियों में ये निमित्तत्व है, काम हो ही जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य हमारे प्रयोजन पर नहीं है यही बड़ी आपत्ति है। और यही कारण से हमें ऐसे योग होने पर भी, सतयोग होने पर भी लाभ नहीं हो रहा है, यही कारण है। और यही विधि का मुख्य पहलू है, सारे कार्य करने की विधि का यही मुख्य पहलू है। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका का विषय प्रयोजनभूत है, सत्पुरुष का योग का महत्व तो अत्यंत अत्यंत प्रयोजनभूत है, जिससे निर्मलता जैसा अनुपम लाभ होता है जो कहीं से भी नहीं होता है। तो हमारी जिज्ञासा इस विषय में सतेज हो जानी चाहिए और यही वर्तमान में करने योग्य है। दूसरा प्रश्न व्यक्तिगत है तो कृपया व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछिए, पूछेंगे तो भी इसका उत्तर नहीं देंगे। हाँ, फिर भी किसी भी कार्य का, कार्य पद्धति का एक डिसिप्लिन होता है, शिस्त होता है, इसके बाहर हम जाते नहीं, जाएंगे भी नहीं। आप अपने लाभ के लिए कुछ भी करें, लेकिन जब आप अपने आप में कुछ भी कर सकते हैं दूसरे के साथ तो इसकी मर्यादा होती ही है। नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, व्यक्तिगत प्रश्न पूछना ही मत, पूछेंगे तो हम जवाब देंगे भी नहीं। ये हमारी इस शिविर की डिसिप्लिन आप समझ लेना और डिसिप्लिन में रहना, ये मेरी विनंती है आप लोगों को। तीसरा प्रश्न, कोई जीव ज्ञाने को पहचाने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। ज्ञाने की पहचान है सम्यक दर्शन के कारणभूत भाव भाषण का कारणभूत बीज है, क्या कैसे सम्यक दर्शन के कारण भाव भाषण है स्वरूप का और इसका कोई बीज है तो ज्ञानी पुरुष को पहचान करना हो, इसलिए इस विषय पर महत्व दिया गया है। इसलिए इसके बिना किसी को कोई पारमार्थिक लाभ होने की संभावना नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य बनने के बाद भाव भाषण से पहले, और भाव भाषण के बाद तथा सम्यक के बाद जो भोगी ज्ञान होता है उसमें ज्ञान होता है, जो सम्यक के पहले वाला भिन्न नहीं पड़ता है, तो ज्ञान का आदर आता है उस वक्त राग का निषेध नहीं है, राग का निषेध है उस वक्त ज्ञान का आदर नहीं है, क्रम पड़ता है, भले अंतर थोड़ा है तो क्रम पड़ता है, ऐसा मानता है। प्रत्यक्ष है एक ऐसी चीज है कि जिसमें फर्क नहीं पड़े, इसका नाम लक्ष्य। क्या फर्क पड़े इसका नाम लक्ष्य नहीं कहा जाता। वैसे तो यही के साध्य के स्थान में है पूर्णता, तो पूर्णता कहाँ है? साध्य के स्थान में है, यही के स्थान में है, आदर्श के स्थान में है, पहुंचने का वो स्थान है। फिर भी उसको लक्ष्य क्यों कहा है? लक्ष्य है वो बदलता नहीं है, इसलिए लक्ष्य का यही कारण है, जिसका स्मरण नहीं करना पड़े, जिसका विस्मरण होता है। और प्रश्न है इसमें, इसको वेदज्ञान वाले में कोई प्रश्न है? भावबासन के बाद में सहजता कुछ अंश में आती है, कुछ अंश में लक्ष्य वाले को नहीं भी आती है, कुछ अंश में आती भी है। ऐसे भावबासन के बाद में सहजता बहुत आ जाती है, वो फर्क है, वो भी फर्क है, ये बात भी सही। इंद्रियन का प्रयास करता है तो थोड़ा तो उठा उठा करके निकल चला करके भी प्रसंग वसाद भी होता है, जबकि भाववासन के बाद बहुत सहजता आती है और ज्ञान के समय तो सहजता है ही, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। किसकी वाणी ज्ञानी और विद्वान में आत्मस्पर्शी होती है और कब व क्यों? ज्ञानी की वाणी ही आत्मस्पर्शी होती है, विद्वान की वाणी उतनी यानी अच्छी ऑरेटरी हो सकती है लेकिन आत्मस्पर्शी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा का स्पर्श ही नहीं हुआ है तो आत्मस्पर्शी कहाँ से होगी। इसलिए कोई ऑरेटर अच्छा हो सकता है, विद्वान वक्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन जो स्पिरिट, जो रस आत्मिक स्पर्श से आता है, ये ज्ञानी के वाणी में आता है। और इस पर कृपालु देव का पत्रांक 679 है, 679, जिसको लिखना हो लिख ले, उसमें बहुत विस्तार से वो बात चली है। पर उसमें खास बात जो चली, बहुत सी बातें चली है, विस्तार करने जाएंगे तो 2 घंटा और लगे इसका भी, लेकिन खास बात जो है, मुद्दे की बात है, वो है इसमें कि आशय फर्क होता है। ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी भले ही विद्वान हो, इसकी वाणी में आशय फर्क होता है। जो आशय से वाणी ज्ञानी की आती है, ऐसा आशय अज्ञानी की वाणी में कभी होता ही नहीं है। जी ठीक है, आशय माने क्या? ठीक, आशय वो चीज है कि कोई भी विषय चलता हो, कोई भी न्याय चलता हो, कोई भी पहलू चलता हो, कोई भी प्रकरण, कोई भी गाथा, कोई भी शास्त्र चलता हो, उसको आत्म कल्याण का आशय को केंद्रित करके वो बात चलती है, चाहे व्यवहार नहीं की हो, चाहे निश्चय नहीं की हो, चाहे विधि की हो, चाहे निषेध की हो, सेंट्रलाइज करते हो अपने ज्ञान में, वो केंद्र स्थान है, तो वाणी भी उसको केंद्रित करके ही प्रवर्तित होती है। ऐसा आशय ज्ञानी के अलावा किसी के वाणी में प्रयोजन तो सुख का ही होता है, उसमें कोई सवाल नहीं। ज्ञान बढ़ाने का प्रयोजन ही अप्रयोजन को प्रयोजन मानना है, वो तो मुमुक्षों को भी नहीं होता, ज्ञानी को तो होना ही, होने का सवाल रहता ही नहीं। वाणी में भी ज्ञान बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं। ज्ञान क्या बढ़ाना है? अंध ज्ञान अंदर में भरा है, बढ़ाना बढ़ाना क्या है? दिखाना है क्या किसी को? हाँ ठीक है, वो प्रश्न रह गया आपका, कब और क्यों आत्मस्पर्शी होती है। तो प्रश्न में वो होना चाहिए कि कब किसको प्रश्न किसको स्पर्श करती है और क्यों स्पर्श करती है, ये प्रश्न ठीक है। कब प्रश्न स्पर्श करती है? जब खुद ही आत्म कल्याण के पीछे लगा हो तब। और क्यों स्पर्श करती है? कि अपने इसको ग्रहण करने की योग्यता है, इसलिए स्पर्श करती है। यानी दर्शन मोह मंद हुआ है उसको स्पर्श करती है, जिसने दर्शन मोह की रजाई उड़ी है उसको तो श्री गुरु की उपदेश की लकड़ी नहीं लगती। वो तो सुबह आया ही था। प्रत्येक द्रव्य अखंड है, पर्याय रहित तो कोई द्रव्य नहीं होता है, ऐसा आगम वचन है। स्वभाव पूर्ण द्रव्य का अंश है, पूर्ण द्रव्य नहीं है। क्या अनुभव में प्रमाण रहित द्रव्य अर्थात केवल स्वभाव आ सकता है? कृपया प्रकाश डालकर अनुग्रहित करें। केवली भगवान स्व का पर्याय रहित का अनुभव करते हैं या वर्तमान पर्याय सहित का अनुभव करते हैं? अनुभव पर्याय में होता है, चाहे निगोद का जीव हो चाहे सिद्ध व्यवस्था वाला जीव हो। त्रिकाली स्वभाव में अनुभव होता ही नहीं किसी को, इसलिए जहां तक अनुभव से हमें विचार करना है तो अनुभव तो पर्याय में ही होता है, त्रिकाली में होता नहीं। किंतु जो द्रव्य स्वभाव है वो अवलंबन का विषय है, जबकि अनुभव की पर्याय अवलंबन का विषय नहीं है। भले ही अनुभव पर्याय में होता हो किंतु अनुभव की पर्याय अवलंबन का विषय नहीं है। तो पर्याय स्वयं त्रिकाली का अवलंबन लेती है, उस वक्त प्रमाण ज्ञान होता है द्रव्य पर्याय का युक्त अनुभव। तो अनुभवी को प्रमाण ज्ञान होता ही है नहीं होता है वो सवाल पैदा नहीं होता। अब प्रश्न रहा कि प्रत्येक द्रव्य अखंड है, अखंड का दो अर्थ है। द्रव्य गुण पर्याय समेत कहना वो भी द्रव्य की अखंडता है, और एक समय की पर्याय को छोड़ करके त्रिकाली द्रव्य स्वभाव जो कि अंश है पूरा द्रव्य का, उसको भी अखंड द्रव्य स्वभाव कहने में आता है, क्योंकि उसमें तो कोई खंडिता होती नहीं है। तो जहाँ जो प्रकरण चलता है उसी का उसी अनुसार भाव अर्थ समझ लेना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय का विषय मुमुक्षु के लिए प्रयोजन भूत है कि नहीं, क्या आप विषय को पुरुषार्थ प्रेरक कह सकते हैं? क्रमबद्ध पर्याय का विषय ज्ञायक स्वभाव को और एकर्ता स्वभाव को दिखाने के लिए प्रयोजन भूत है, लेकिन एक बात सभी मुमुक्षु की भूमिका को प्रयोजन भूत होती है ऐसा कभी बनता नहीं है। पर्याय का विषय अवलंबन के लिए अप्रयोजन भूत है, जबकि ज्ञायक स्वभाव प्रयोजन के लिए आश्रय के लिए प्रयोजन भूत है, और दोनों का सापेक्ष संबंध है। जब मैं ज्ञायक हूँ तो मेरी पर्याय क्रमबद्ध है, इसको उस पर मैं उदासीन हूँ, ऐसा प्रयोजन सिद्ध होता है। लेकिन उस प्रयोग में आने तब उस प्रयोग में आने की क्षमता न हो जिसको, योग्यता न हो जिसको, इसके लिए ये जानने की चीज रह जाती है तो कभी भी प्रयास भी हो सकता है। और ये पुरुषार्थ प्रेरक भी है सही समझे तो, वरना पुरुषार्थ तो हानिकारक भी है अगर यथार्थ समझ करी तो। अशाता की पीड़ा के काल में प्रयोग करने की विधि क्या है, ताकि अशाता की वेदना से भिन्न ज्ञान का वेदन हो और सुख हो? अच्छा है, वेद ज्ञान का विशेष रूप से प्रयोग करने का मौका असाता की पीड़ा के उदय में आता है, इसलिए ही ज्ञानी कभी उत्तीर्णा करके तपस्या करते हैं। असाता का उदय नहीं होता है तो जो सत्ता में पड़ी है प्रकृति उसको उत्तीर्णा करके ले आते हैं, क्योंकि प्रयोग करने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए उसमें प्रयोग करना अच्छा है ऐसा समझ करके इस विधि को समझें। विधि ऐसी है कि उस वक्त भी जब असाता की पीड़ा चालू है उस वक्त उस पीड़ा की सत्ता में हम नहीं है, और हमारी चैतन्य सत्ता में पीड़ा नहीं है। पीड़ा हमारे सपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता में जानने में आती है, लेकिन हमारे में आती नहीं है। ऐसा निज सत्ता का अवलंबन लेना, अनुभव में लेना, भिन्न अनुभव में लेना, यही वेद ज्ञान की विधि है। ऐसा प्रयोग करने से पीड़ा का दुख नहीं होता है, पीड़ा का ज्ञान होता है, लेकिन पीड़ा का दुख नहीं होगा। और यही अधिक कल्याणकारी समय मिला ऐसा लगेगा। कृपालु देव का पत्रांक 913 में ये विषय बहुत सुंदर चला है। भाव भाषण क्या है? भाव भाषण स्वरूप का भाव भाषण के स्वरूप का निश्चय है, यानी स्वरूप का अस्तित्व ग्रहण है, उसको भाव भाषण कहने में आता है। उसको बीज ज्ञान भी कहने में आता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान का बीज है। क्या भाव भाषण अंतर्मुखता ज्ञान वेदन स्वसन्मुखता एक ही है? हाँ, भाव भाषण के काल में स्वसन्मुखता आती है, ज्ञान वेदन होता है। तो यही भाव भाषण का पहलू है सब। भाव ज्ञान वेदन वही भाव भाषण का एक पहलू है, पर उस ज्ञान ज्ञान का वेदन करता है तो सन्मुखता आती है, ये भी इसका एक पहलू है। और यहाँ से ही अंतर्मुख होने की विधि का एहसास आता है और प्रयोग चालू होता है। बार बार स्वरूप के आश्रय से पुरुषार्थ का जोर उठता है, और उस जोर के एक पराक्रम की परिस्थिति में, अपूर्व पराक्रम की परिस्थिति में जब स्वानुभव होता है, तब अंतर्मुख हुआ ऐसा कहने में आता है। भाव भाषण एवं आत्मानुभूति दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? दोनों में अंतर है। आत्मानुभूति शुद्धोपयोग के काल में होती है, और भाव भाषण इसका कारण है, एक कारण कार्य का संबंध है, दोनों एक नहीं है। भाव भाषण होते ही क्या उसकी परिणति भी सम्यक दर्शन की तरह निरंतर चलती है? हाँ, भाव भाषण होने से स्वरूप का रस स्वरूप के महात्म के दौरान चालू हो जाता है। जो साक्षात सिद्ध पद है अपना स्वरूप, उसका ही अपने रूप में भाव भाषण हुआ है, तो जितना अचिंत्य महिमा है उतना महिमा ज्ञान में भाषित हो जाने से, कोई समुद्र में भरती आती है वैसे महिमा भीतर में से उमड़ पड़ती है। और जहां जिस भी परिस्थिति खुलासा करे, भाव भाषण के बहुत प्रश्न आ रहे हैं आजकल, प्रकरण बड़ी चलता है ना, कुछ नया भी लगता है हमारे लोगों को भी। भाव भाषण में ही स्वरूप का लक्ष्यगत होता है, यानी कि फिर जो स्वरूप लक्ष्य में आता है उस वक्त भाषण पूर्वक लगने लगता है, तो आत्मा वहां से खिसक सकता नहीं है। जैसे कोई नजरबंदी हो जाती है, ऐसे नजराया करता है। ये बात कृपालु देव ने कही, उपदेश व्याख्यानुसार है, व्याख्यानुसार 120 बस 220 नंबर है, 220 के बोल में है, पीछे परिशिष्ट जो लिया है ग्रंथ में उसमें वो बात लिया है। तो अस्तित्व ग्रहण है, और ये सम्यक्त्व का एक अंग है, कारण नहीं बोले वहां, कारण शब्द हल्का पड़ता है खुद को। क्या भाव भाषण होना ये सम्यक्त्व का अनन्य कारण है, ये बात कहीं जगह चली। इधर कृपालु देव ने तो उसको अंगभूत कहा, ये सम्यक्त्व का एक अंग है, क्योंकि वो सम्यक्त्व इससे होगा होगा और होगा ही। और ऐसा स्वरूप लक्ष्य में आता है, ऐसा लक्ष्य में आता है कि आत्मा वहां से खिसक सकता नहीं। क्या वहां से लक्ष्य नहीं खिसकता, ऐसा नहीं बोलते, वहां आत्मा नहीं खिसकता है ऐसा लिखा है। तो मैंने वही आत्मा हो गया उसका, ऐसा भाव वासन का विषय है। विशेष रूप से इनके बहुत से पहलू हमने निर्भ्रांत दर्शन की पगडंडी के तीसरे प्रकरण में लिखे हैं। विशेष जानकारी के लिए ये प्रकरण पढ़ लेना। कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है? लेकिन जब कार्य शुद्ध होता है, पहले उस वक्त उसका अवलंबन आता है, इतनी बात जरूर है। लेकिन कारण शुद्ध पर्याय का तो जन्म नहीं होता, क्योंकि ये तो त्रिकाली का प्रत्येक वर्तमान है, इसका नया नया जन्म होता नहीं है। और उत्पाद ये रहित है, जिसका उत्पाद होता है उसको जन्म हुआ ऐसा कहने में आता है। तो इसका स्वरूप वो है कि जो त्रिकाली अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा का पर वर्तमान में अवलंबन आता है। त्रिकाली होने पर भी भूत भविष्य में इसका अवलंबन तो ले ही नहीं सकते, कोई कार्य तो वर्तमान में होता है अवलंबन का, तो किसका अवलंबन आता है? त्रिकाली का। तो त्रिकाली तो अनादि अनंत है, इसका अवलंबन आएगा कहां से? क्या भूतकाल के पदार्थ का अवलंबन आ सकता है? क्या भविष्य के पदार्थ का अवलंबन आ सकता है? कि वो तो संभव नहीं। इसलिए इसी त्रिकाली का जो वर्तमान है, उस वर्तमान को ही कारण शुद्ध पर्याय कहने में आइए भेद गिन करके। वास्तव में पर्याय शब्द यहाँ उत्पाद व्यय के अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है, कि पर्याय शब्द का रूढ़ी अर्थ हमने जो पकड़ लिया है, अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। सामान्य पर्याय का स्वरूप क्या है तथा कारण शुद्ध पर्याय और सामान्य पर्याय के बीच में क्या फर्क है? सामान्य ज्ञान के सामान्य पर्याय उत्पाद व्यय वाली है, जबकि कारण शुद्ध पर्याय में उत्पाद व्यय नहीं है, वो एक रूप ज्ञान के पर्याय है, उसमें अनेक रूपता नेय के प्रतिबिंबित होने से होती है, उसको ज्ञान विशेष कहने में आता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। कारण शुद्ध पर्याय वास्तव में पर्याय ही नहीं है, त्रिकाली का भेद को वहां पर्याय कहने में आया है, और भेद को पर्याय कहना ये यथोचित है, और ऐसा कह सकते हैं उसमें कोई अनुचित नहीं है, आगम विरुद्धता भी नहीं है। कि नियम सार का विषय है 15 गाथा का, और नियम सार में टीकाकार मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है टीका करते हुए, कि परिसमंतात् भेदम इति इति पर्यायः, ऐसा करके पर्याय की परिभाषा बनाई है, वह डेफिनेशन किया है इसका। तो भेद को प्राप्त होती है इसलिए हम उसको पर्याय कहते हैं, उत्पाद होता है इसलिए पर्याय कहते हैं, सो बात वहां नहीं लिखनी है, इसलिए ऐसी व्याख्या भी स्पष्ट कर दी है अपने आप में, तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो ये शंका रहने वाली नहीं है। हाँ, काल सापेक्ष भेद है, वास्तव में भेद नहीं है, काल सापेक्ष भेद है, क्योंकि अवलंबन वर्तमान का ही लिया जाता है। और उस फिर उसको भेद कहना था, पर्याय क्यों कही? आप ये प्रश्न अवश्य कर सकते हो, क्या तो फिर इसको भेद कहना था, पर्याय क्यों कही? हम तो चक्कर में पड़ते हैं ऐसे शब्दों से, ये प्रश्न अवश्य करो कि आप लोगों को पर्याय की दुश्चिंता बहुत रही, क्या क्या रही? पर्याय की चिंता नहीं कहेंगे तो दुश्चिंता कहेंगे, क्योंकि इस चिंता से स्वरूप का अवलंबन मिलता नहीं है। तो इस चिंता छोड़ाने के लिए कि तुझे पर्याय चाहिए ना, लिए ये तेरे पर्याय कारण शुद्ध पर्याय, छोड़ इसकी चिंता, ठीक। इसलिए हमें उसको पर्याय कहते हैं। ठीक, तो पर्याय जैसा वो विकल्प का लफड़ा है ना, छूटता नहीं है, विकल्प लेकर अंदर में कैसे जाना, ऐसे ये पर्याय वाली बात भी ऐसी छूटती नहीं है। कहते कि ये कारण शुद्ध पर्याय है, तेरा स्वरूप है वर्तमान में, तो तेरा ही स्वरूप है। पर्याय की चिंता छोड़, पर्याय की चिंता करने से पर्याय में सुधार होगा नहीं। जानी जानी ने मारू ज्ञान हवे थाकी रही हूं, जान जान कर हिंदी करता हूं, मेरा ज्ञान थक गया है। ठीक है, अब अंदर से ऐसा आवाज आता है, अंदर से आता है तो अच्छी बात है कि जानने का बंद कर, अब तो जानने का बंद कर और जितना जान लिया है इसका उपयोग कर, अच्छी बात है। जब जितना जाना है उसमें तेरा उपयोग स्थिर हो जाएगा, पीछे ही आगे का जानने का काम करना, क्या ये योग्य है, हाँ ये योग्य है। अगर नेपथ्य में से भीतर में से आता है तो योग्य है, ऊपर ऊपर से आता है तो योग्य नहीं। कृपया ये परलक्ष्य ज्ञान में थकान होती है, कितने घंटे स्वाध्याय करते हो, कितने घंटे गुरुदेव की टेप सुनते हो, क्यों बंद कर देते हो, हाँ? अब इसको क्या करते हो, जानते तो हो कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, फिर टेप को बंद क्यों करनी पड़ती है। कि ये थकान आएगी आएगी और आएगी, क्योंकि ये कृत्रिम जानने का प्रयोग है, क्या सहज प्रयोग नहीं है। कृत्रिमता में थकान आए बिना रहती नहीं। देखिए आपके शरीर प्रकृति को देख लीजिए, अब सोते सोते क्यों थकते हो, क्योंकि कृत्रिम आराम है। बैठे बैठे क्यों थकते हो, कृत्रिम आराम है। चलते चलते क्यों थकते हो, लेकिन कभी सांस लेते लेते थकते हो क्या, हाँ थकते हो क्या? अरे सांस बंद किया जाए तो थक जाओगे, चालू रहने में से तो थकान नहीं आगी, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए अगर बंद हो जाएगा तो थकान आ जाएगी, क्योंकि वो सहज है, इसका प्राण है, वो शरीर का श्वासोश्वास है, ये तो इसका प्राण है, इसमें थकान कभी नहीं आएगी। अब एक भी अवयव को 24 घंटा तो चालू करो, जैसे ये 24 घंटा चालू नहीं रह सकते, खड़े खड़े नहीं रह सकते, बैठे बैठे नहीं रह सकते, लेटे लेटे नहीं रह सकते, कोई भी शरीर के अवयव की एक भी क्रिया 24 घंटा चालू रखो तो नहीं रख सकते, लेकिन सांस चालू रहता ही है, उसमें थकान नहीं आएगी, ये स्वाभाविक है, स्वभाव में थकान नहीं है, कृत्रिमता में थकान आएगी आएगी और आएगी। कृपया निम्न प्रश्न का प्रकार प्रकाश डालिए, स्वपर प्रकाशक सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए आत्मार्थी को किस प्रकार उपयोगी हो। हाँ, स्वपर प्रकाशक का सिद्धांत है या वस्तु का स्वरूप है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, इसका उपयोग यानि पारमार्थिक लाभ आत्मार्थी को कैसे मिलता है, प्रश्न अच्छा है। कि पर से भिन्न होने का यही एक साधन है, ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना ही पर से भिन्न होने का साधन बनता है, क्योंकि अनादि से पर से अभिन्नता अनुभव कर रहे हैं, और अगर किसी भिन्नता स्वपर प्रकाशकपने से नहीं समझी, नहीं देखी, नहीं जानी, तो भिन्नता होगी भी कैसे। इसलिए स्वपर भिन्नता के लिए ये उपयोगी है, और ये आत्मार्थी को वेद ज्ञान में प्रथम चरण में ही इसका उपयोग होता है, बाद में भेद ज्ञान में ज्ञान की व्यापकता, ज्ञान की वेदकता, ज्ञान की प्रत्यक्षता का एहसास आता है जितना प्रयोग आगे बढ़ता है उसी मात्रा में। हम स्वतः प्रकाश के कारण से ही पर रूप में जानने में आया। पर रूप में क्यों जानने में आया? कि ज्ञान में वो पर रूप में दिखता है और वे ऊपर प्रकाशकपणा है तो पर रूप में दिखता है, वरना कहाँ से दिखेगा। इसलिए उपयोगी है। अगर वो सर्वथा निरुपयोगी होता तो ये गुण स्वभाव रहता नहीं। ऐसा है, कोई ऐसे मानते हैं। इसलिए स्पष्टीकरण है कि पर प्रकाशक बने में तो आत्मा को नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि राग द्वेष होता है। कर दो बंद उसको, ये मिथ्यात्व है, ये नितांत मिथ्यात्व है। ऐसा कोई कर भी नहीं पाएगा, कर होगा हो सकता भी नहीं है, न छदमस्त अवस्था में न केवली की अवस्था में। पर को जानने का कोई बंद कर सकता नहीं है। आत्मभावना भाता जीव, आत्मभावना भाता जीव लहे केवल ज्ञान रे, इस मंत्र कृपालु देव के हैं। सर्वज्ञ देव परमात्मा स्वरूप बीज मंत्र, कृपया दोनों बीज मंत्र की साधकों को कैसे उपयोगी है स्पष्ट करें। आत्मभावना भाना मतलब जैसा हमारा आत्मस्वरूप है ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा स्वरूप की भावना आना। भावना आना मैंने रुचि और रस पूर्वक स्वरूप को भाना। ऐसे आत्मभावना से केवल ज्ञान तक की सिद्धि होती है, यही कृपालु देव का कहने का अभिप्राय है वहाँ, और वो सही है बिल्कुल। भावना भा करके देख लीजिए, आपको अवश्य अवश्य इसका लाभ होगा और होगा। इसे बोलने से या विकल्प से काम नहीं होता है, भावना से काम अवश्य होता है। सर्वज्ञ देव परमात्मा स्वरूप, हाँ सर्वज्ञ देव परम स्वरूप, सर्वज्ञ देव वो अपना स्वरूप है। सर्वज्ञ देव भी परम स्वरूप में प्रकट है और अपना स्वरूप भी सर्वज्ञ रूप से प्रकट है। वो भी आत्मस्वरूप की भावना भाने के लिए ही कृपालु देव ने इस बात का मंत्र दिया है। दोनों एक न्याय से एक ही बात है। आज के प्रवचन में ज्ञान साधन संबंधी बात आई थी कि ज्ञान साधन में अनंत गुण का रूप रहा हुआ है, कृपया समझाइए। ज्ञान साधन है यानी ज्ञान स्वको भी जानता है, दूसरे गुण को भी जानता है, दर्शन को भी ज्ञान जानता है, पुरुषार्थ को भी ज्ञान जानता है, जबकि दूसरे परिणाम और न अपने को जानते हैं न ज्ञान को भी जानते हैं। इसलिए एक विशिष्ट ज्ञान के परिणमन में साधन का कारण रहा है और वो ज्ञान साधन है, उसमें एक गुण के पर्याय में अनंत गुण का रूप ये वस्तु का स्वरूप है। मां दृष्टांत दिया था कि ज्ञान है तो अस्तित्व का रूप है और ज्ञान राग रहित आकुलता रहित है तो आकुलता रहित सुख का स्वरूप है, तो ज्ञान को सुख का भी रूप है। और ज्ञान का प्रभुत्व होता है तो उसका ऐश्वर्य भी है, तो ईश्वर तो गुण का रूप है। ज्ञान में सूक्ष्मता है तो ये सूक्ष्म गुण का रूप है। ऐसे बहुत सी बातें उसमें हैं, खास करके अनुभव प्रकाश ग्रंथ है दीपचंद जी काश्तीवाल का, इसमें वो बात अच्छी तरह लिया है शुरू में विस्तार से। यहाँ से पढ़ने बहुत से गुण का विषय उन्होंने ज्ञान में घटाया है और अन्य गुण में भी आपस में घटाया है। यही ज्ञान साधन अनंत गुण का रूप, तो वो उसको पारिणामिक शक्ति कह सकते हैं, गिन सकते क्या। पारिणामिक में तो अनंत गुण का अभेद रूप है, अनंत गुण का भेद भी देखा नहीं जाता है, अभेद से वो पारिणामिक है, इतना लेना है। तुझ गुरुदेव के प्रताप से आज मुमुक्षु वर्ग हमेशा एक कलाक से चार, एक घंटे से चार घंटे तक अथवा इससे भी ज्यादा वक्त स्वाध्याय करता है। प्रवचन में आपने कहा कि स्वाध्याय तो करते हैं परंतु पूरे दिन में वेदज्ञान कितने समय चलता है करते हैं, तो इस प्रश्न इतना स्वरूप की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय पीछे का प्रथम सीढ़ी है, वेदज्ञान करना यही है, विज्ञान के विषय में विस्तार से समझाइए। तो ये सही है कि स्वाध्याय अगर वेदज्ञान नहीं करते हैं तो स्वाध्याय का जो मर्म है वो वेदज्ञान के प्रयोग के बिना परिणमन होने वाला नहीं है। इसलिए जिसको स्वाध्याय करके इस स्वाध्याय का बोध को अंतर में उतारना है अपने आत्मा में, तो उसको वेदज्ञान के प्रयोग में अवश्य अवश्य जाना चाहिए, और यही विधि का विषय है। अजित भाई, विधि का मुख्य विषय भेद ज्ञान है, तो जितने भी चर्चा हमारे शिविर में वेद ज्ञान विषयक चली वो विधि विषयक है। तो आप भी कुछ अंश में चली है, ज्यादा तो क्या है कि जो वेद ज्ञान में आता है प्रयोग में विधि के क्षेत्र में प्रवेश करता है उसको उस विषय में विशेष रस आता है समझने में, वरना वो समझ भी पाएगा नहीं कि क्या क्या कैसा चलता है भीतर में वेद ज्ञान में। जैसा कि शुरू में वेद ज्ञान का प्रश्न चल गया, अभी पहले वाला पूर्णता के लक्ष्य वाला वेद ज्ञान, फिर भाववासन के बाद के वेद ज्ञान, फिर स्वरूपानुभव के बाद के वेद ज्ञान, ये सब विषय चला ही है, वो विधि का विषय है। 5:30 हो गया है शायद, मैं समझता हूँ कि समय पूरा हुआ है, तो ये प्रश्न जो है कितने पेंडिंग है कर लेंगे। हाँ, शाम के स्वाध्याय में वो जो बाकी के प्रश्न है पहले ले लेंगे, बाद में स्वाध्याय चालू करेंगे। ठीक,
આજ સાંજનો કાર્યક્રમ આ પ્રમાણે છે, કાર્યક્રમમાં નજીવો ફેરફાર છે, સાંજના 7:30-7:30 દિનેન્દ્ર ભગવાનની આરતી, 7:30-8 દિનેન્દ્ર ભગવાનની ભક્તિ અત્રે દીપકભાઈ ગોથળિયા કરાવશે, 8:00-8:45 આત્મારતી વિદ્વાન વાઈશ્રી પ્રાણલાલભાઈ કામદારનું શાસ્ત્ર પ્રવચન, અને 8:45-9:45 વિદ્વાન વાઈશ્રી શશિકાંતભાઈ શેઠનું શાસ્ત્ર પ્રવચન, એ આજનો કાર્યક્રમ છે। આવતીકાલનો કાર્યક્રમ સવારના 6:30-7:30 જિનેન્દ્ર ભગવાનનો અભિષેક તથા પૂજા, 8:30-8:30 શાસ્ત્ર પ્રવચન, 8:30-9:30 રથયાત્રા, 9:30-10:30 શાસ્ત્ર પ્રવચન વિદ્વાન શ્રી શશિકાંતભાઈ શેઠ દ્વારા, 10:30 આગળ સમયમાં રથયાત્રાને કારણે 5-15 મિનિટ વહેલું મોડું થાય એ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ 15 મિનિટ વહેલા મોડા થશે, અને 10:30 આભાર વિધિ વગેરેનો જે એક કાર્યક્રમ છે તે રહેશે। આવતીકાલના બપોરના પણ પ્રવચનનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે તે રાતના જાહેર કરશું। જય જિનેન્દ્ર। આજનું સાંજના જમવાના રૂપિયા 5001 મુમુક્ષુભાઈ તરફથી મળેલા છે, ભાઈએ પોતાનું નામ આપવાની ના પાડેલી છે। બીજા એક સ્વામી ભાસ્તલે જમણ ખાતે 2001 રૂપિયા એક ભાઈ તરફથી મળેલા છે, મલાડના ભાઈ તરફથી નામ આપણને નામ પાડ્યું છે। બહારગામના મહેમાનો જે કોઈ બહારગામ આવતીકાલે જવાના હોય તેઓ પોતાનો જે કંઈ સામાન લીધો હોય રૂમમાં તેઓ ઓફિસમાં પરત નોંધાવીને પોતાનું નામ વગેરે વિગત જાહેર કરીને અમારા રેકોર્ડમાં તે મહેમાનો હવે ગયા છે એની અમને નોંધ થાય એ રીતે અમને જણાવીને તેઓ જઈ શકે છે। હવે સ્તુતિ જીનેન્દ્ર ભગવાન ની સ્તુતિ.
મેઘ ઘટાસમ શ્રીજી નવાણી મેઘ